लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। धनी अपने को बुद्धिमान समझता, किंतु समझदार दरिद्र उसका भांडाफोड़ करता है। जब धर्मी विजयी है तो महोत्सव होता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 11 से लेकर 14 तक के पदों में निहित शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। उक्त पदों में इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि जिन लोगों के पास धन दौलत होती है वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, क्योंकि चाहे वे अन्य बातों से अनभिज्ञ हों वे जानते हैं इसे कैसे प्राप्त करना है और कैसे बचाना है। वे अपेक्षा करते हैं कि वे जो कुछ भी कहें उसे कानून के रूप में माना जाए और कोई भी उनका खंडन करने का साहस न करे। इनके विपरीत गरीब लोग होते हैं जो प्रायः घमंडी दौलतमंदों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत कर ज्ञान प्राप्त किया है। वे प्रतिष्ठावान होते हैं क्योंकि ईश्वर अपने वरदानों को विविध रूप में वितरित करते हैं। अस्तु, अपनी धन संपदा पर हम कदापि घमंड न करें और न ही गरीब या निर्धन का उपहास करें, क्योंकि वह भी आप ही की तरह ईश्वर द्वारा सृजित और मनुष्यों को दिए गए वरदानों से संपन्न है। फिर लेखक कहता है, जब धर्मी विजयी है तो महोत्सव होता है, जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं। इस पद से तात्पर्य यही कि जब ईश प्रजा का सुख उनके राष्ट्र का सम्मान है, जब धर्मी लोग आनंदित होते हैं, जब उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिलती है, अपने धर्म का स्वतंत्र अभ्यास करने मिलता है और उन्हें सताया नहीं जाता, जब सरकार उनका समर्थन करती है तो अवश्य ही वे समृद्ध होते हैं, और इससे भी अधिक जब उन्हें वरीयता दी जाती है और उनके हाथों में शक्ति दी जाती है तो देश महान बनता है और गौरवान्वित होता है। किंतु जब दुष्ट प्रबल होते हैं तो भले लोग अस्पष्टता में धकेल दिए जाते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर घर से भागना पड़ता है। भ्रष्टाचार इतने व्यापक रूप से व्याप्त होता है कि लगता है मानो कोई भला व्यक्ति नहीं बचा, सर्वत्र दुष्ट का बोलबाला होता है। 28वें अध्याय के 13वें पद में लेखक कहता है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। श्रोताओ, पाप में लिप्त होना, उसे कम करना या माफ करना, उसे नकारना या छिपाना, या फिर उसका दोष दूसरों पर मढ़ना मूर्खता है। जो इस प्रकार अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि देर सवेर उसका पता चल ही जाएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जो प्रकट न हो, और फिर पापी का अंतःकरण अनवरत उसे काटता रहेगा, उसे सच्ची शांति कदापि नहीं मिल पाएगी। आगे लेखक कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। श्रोताओं, वही सुखी होता है जो हमेशा अपने मन में ईश्वर की महिमा, भाई और पड़ोसी की भलाई, शासन के प्रति पवित्र भय और श्रद्धा रखता है। वह विवेकशील है जो बुराई के आभास से भी डरता है, जो खुद को पर्याप्त कभी नहीं मानता बल्कि हर क्षण बेहतर होने की उम्मीद रखता है। वह विश्वास और सतर्कता का जीवन जिएगा, वह खुश रहेगा, सुखी रहेगा। ऐसा व्यक्ति धन्य है, पवित्र है। और अब आइए 28वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार हैं: दरिद्र जनता पर शासन करने वाला दुष्ट दहाड़ते सिंह या शिकार के भूखे रीछ जैसा है। नासमझ शासक अपनी प्रजा को लूटा करता है। अन्याय के धन से घृणा करने वाले की आयु लंबी होगी। रक्तपात का दोषी कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, उसे कोई न रोके। जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। श्रोताओं, धर्म शास्त्रों में लिखा है, तू अपने लोगों के शासक की बुराई न कर। लेकिन यदि शासक ही दुष्ट हो, जो लोगों पर अत्याचार करता हो, विशेष रूप से गरीब लोगों पर, जो उन्हें लूटता हो, तो सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार वह दहाड़ने वाले सिंह की तरह भयानक है जो जंगल को दहला देता है। वह भूखे भालू की तरह भक्षण करने वाला है, क्रूर, बर्बर और रक्त पिपासु। वस्तुतः यहाँ दुष्ट शासक की दो बुरी आदतों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। सर्वप्रथम वह लालची होता है, वह धन से प्रेम करता है, जो सभी बुराइयों की जड़ है। द्वितीय, दुष्ट शासकों में विचार की कमी होती है और वे अपनी सरकार को जितना लंबा हो सके खींचते हैं ताकि अधिक से अधिक धन कमा सकें। सूक्ति ग्रंथ का लेखक ऐसे स्वार्थपरत शासकों की निंदा करता है तथा लोगों को उनके विरुद्ध सतर्क करता है ताकि जब भी मौका आए वे ऐसे दुष्टों का चुनाव न करें। निर्गमन ग्रंथ में लोभ से घृणा करना अच्छे शासकों या फिर न्यायाधीशों का चरित्र है जो ईश्वर का भय मानते और लोभ से घृणा करते हैं। इस ग्रंथ के 18वें अध्याय के 21वें पद में अच्छे शासक के गुणों की चर्चा है। लिखा है, लोगों के बीच से तुम योग्य, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, विश्वास पात्र और घूस न लेने वाले व्यक्तियों को चुनो। श्रोताओं, यह तो स्पष्ट है कि जो शासक लोभी होता है वह न तो न्याय करेगा, न ही दया से प्रीति रखेगा, बल्कि उसके अधीन लोग खरीदे और बेचे जाएंगे। आगे लेखक कहता है, रक्तपात का दोषी कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, उसे कोई न रोके। जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। श्रोताओं, हत्या पाप है, महापाप है, और जो व्यक्ति इस जघन्य अपराध में लगता है वह सदैव भयग्रस्त होता है। उसे कहीं भी और कभी भी शांति नहीं मिलती, वह मारा मारा फिरता है। ऐसे रक्तपात करने वालों को कोई न रोके, यानी कि चाहे वह मजिस्ट्रेट हो या निकटतम रिश्तेदार या जो कोई भी हत्या के मामले में पूछताछ करने वाला हो, उन्हें अभियोजन में जोरदार होना चाहिए और सच के आधार पर निर्णय देना चाहिए। हत्या के मामले में न्यायाधीश को खरीदा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हत्यारे को बरी करते हैं या उसे बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, वे खुद खून के अपराध में भागीदार बनते हैं। हत्यारों और बेईमान न्यायाधीशों के विपरीत ईमानदार व्यक्ति होते हैं। वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके मन में ईश्वर का भय बना रहता है। उनकी ईमानदारी और उनकी सच्चाई उन्हें सदैव सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के 14वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंद्य हैं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बृहस्पतिवार सुबह को कहा कि पोप फ्रांसिस ने रात में अच्छी नींद ले और सुबह भी आराम कर रहे हैं। बुधवार शाम को प्रेस कार्यालय ने बतलाया कि पिछले 24 घंटों में पोप के स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। एक बयान में कहा गया कि हाल के दिनों में देखी गई किडनी की हल्की समस्या कम हो गई है। मंगलवार की रात को किए गए छाती के सीटी स्कैन से फेफड़ों की सूजन में सामान्य सुधार देखी गई। बुधवार को किए गए रक्त जांच से मंगलवार को देखे गए सुधार की पुष्टि हुई। पोप फ्रांसिस हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन बुधवार शाम तक उन्हें अस्थमा जैसी कोई सांस संबंधी समस्या नहीं हुई है। वैटिकन प्रेस ऑफिस के अनुसार उनके स्वास्थ्य की संभावित स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। पोप को ब्रोंकाइटिस की शिकायत के बाद शुक्रवार 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने बच्चे को खोने वाले माता पिता को नाम देने के लिए कोई शब्द नहीं है। मासिक पत्रिका प्याजा सन पियत्रो में पोप फ्रांसिस ने चिंसिया नाम की एक मां के पत्र का जवाब दिया है, जिसने एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया। जो पत्नी अपने पति को खो देती है वह विधवा होती है। जो पति अपने पत्नी को खो देता है वह विधुर होता है। जो बच्चा अपने माता पिता को खो देता है वह अनाथ होता है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है। यही पोप फ्रांसिस ने पियाजा सन पियत्रो के पन्नों पर लिखा है। फादर एन्सो फोर्तुनातो द्वारा निर्देशित मासिक पत्रिका, जो विश्वास, आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन के विषयों को जगह देती है, हर महीने एक पत्र का जवाब देती है, और इस बार यह एक महिला का पत्र है जिसने सबसे बड़ा दुख अनुभव किया है, अपने बेटे को मरते देखा है। चिंसिया नामक एक महिला की त्रासदी, जिसने एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया, पोप को बहुत प्रभावित किया। संत पापा ने अपने संदेश में कहा, यीशु जो हमारे साथ रोते, हमारे दिलों में सभी उत्तर बो देंगे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। संत पापा ने अपना यह संदेश अस्पताल में भर्ती होने से पहले लिखा है, जिसमें वे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को उद्धृत करते हैं। वे लिखते हैं, कोई भी बुराई ऐसी नहीं है जिससे ईश्वर यह ना जान सके कि किस तरह से अधिक अच्छाई निकाली जाए। लो सल्वातोरे रोमानो के साथ एक साक्षात्कार में दो शांति कार्यकर्ता जिन्होंने मई 2024 में उत्तरी इतालवी शहर वेरोना में शांति के अखाड़े कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां उन्हें पोप फ्रांसिस का व्यक्तिगत आलिंगन एवं समर्थन प्राप्त हुआ था, शांति के अपने साझा दृष्टिकोण के बारे बात कर रहे हैं। मौज कहते हैं, 7 अक्टूबर को मैंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन मुझे एक भाई मिला। उस भयंकर सुबह हसारा उनके घर में माओज के माता पिता हमास द्वारा दागे गए एक आग लगने वाले रॉकेट से मारे गए। उस दिन से इसराइली पर्यटन उद्यमी माओज इनोन ने अपने दुख को युद्ध के खिलाफ और दो लोगों के बीच शांति के लिए एक दृढ़ और साहसी प्रतिबद्धता में बदलने का फैसला किया है, साथ ही दूसरे की पीड़ा को भी पहचाना है। वे जिस व्यक्ति को अपना नया भाई कहते हैं, अल इजारिया के एक 45 वर्षीय फिलिस्तीनी पर्यटन गाइड हैं। जब अजीज सिर्फ 9 साल का था तो उसके 18 वर्षीय भाई तैसीर को इसराइली सैनिकों ने इसराइली लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ियों पर पत्थर फेंकने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था। तैसीर करीब 1 साल तक इसराइली जेल में रहा। आखिरकार रिहा होने के बाद हिरासत के दौरान यातना के कारण लगी आंतरिक चोटों के कारण कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। अजीज के लिए भी इस पीड़ा ने दोनों लोगों के बीच शांति के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता को जन्म दिया। मौज ने लो सल्वातोरे रोमानो को बतलाया, 7 अक्टूबर को मेरे परिवार पर आई त्रासदी के बारे में सूचना दिए जाने के बाद मुझे सबसे पहले अजीज की ओर से सांत्वना और हार्दिक समर्थन का फोन आया। शांति के लिए हमारी लड़ाई ने हमें भाई बना दिया है, रक्त संबंधों से कहीं ज्यादा। हालांकि मौज और अजीज को शांति के इस बंधन तक ले जाने वाली यात्रा 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई थी। अजीज अपने भाई की मृत्यु के बाद पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए यरूशलेम चले गए। वहां वे फतह की युवा आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि यरूशलेम में रहने से उन्हें सीधे तौर पर इसराइली समाज का अनुभव करने, हिब्रू सीखने और ईसाई कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलाकर ने संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के 2025 सत्र के उच्च स्तरीय खंड में अपने भाषण में परमाणु हथियारों से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे पर परमतम पीठ की गहरी चिंता व्यक्त की। अत्यधिक सैन्य व्यय, जो अक्सर वैध रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक होता है, हथियारों की एक उबाऊ दौर के दुष्चक्र को बढ़ावा देता है, जो गरीबी उन्मूलन, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से महत्वपूर्ण संसाधनों को हटा देता है। वैटिकन विदेश सचिव ने बुधवार को जिनेवा में 24 से 28 फरवरी को होने वाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन में इसी बात पर जोर दिया। प्रतिभागियों को पोप का हार्दिक अभिवादन देते हुए उन्होंने कहा, आज हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। हम एक साथ राष्ट्रों के एक परिवार के रूप में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत एक सामान्य, संतुलित और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए न्यायोचित और साहसी कार्रवाई कर सकते हैं। अथवा इसके विपरीत, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, संघर्ष, हिंसा, बढ़ती असमानताओं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं, जिससे अंततः हथियार कक्ष के अलावा किसी को लाभ नहीं होता। महाधर्मदर्श कलाघर ने कहा कि वैटिकन परमाणु हथियारों और उनके प्रसार से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे के बारे में गहरी चिंता में है। पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पिछले महीने से हो रही लड़ाई में 7,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को बतलाया कि मृतकों में बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं। सुमिनवा ने चेतावनी दी कि पूर्वी कांगो में सुरक्षित स्थिति खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने उत्तरी किवु प्रांत की राजधानी गोमा में लगभग 3,000 मौतों का उल्लेख किया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।